वैधवला पुस्तक तेहरवी लेक्चर नंबर 4। ओम नमः शिवाय। नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वैश्यायाणं नमो लोहे सौवसाऊणं कवियगणगायिकमं भवियजनानन्दकारिणं वीरं नमियूणभणिसामो यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम दर्शन मोक्ष अपना का अर्थाधिकार देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 38। 37 से शुरू करेंगे। हमने ये बात देखी थी कि अपूर्वकरण की बात उन्होंने बताई थी कि उसमें क्या क्या बातें होती है। तो स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, स्थिति बंध अपसरण होता है, और चौथा नहीं, ये स्थिति बंध अपसरण तो पहले से ही चल रहा था, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी, तो उसके बाद अभी बताई है। अब यहाँ हम 37 पृष्ठ पर नीचे की लाइन लास्ट, हाँ ठीक, विशेषा वहाँ वह ने कहा पर अपूर्वकरण के अंतिम समय में अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल, स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध काल एक साथ समाप्त होते हैं। इसका अर्थ है अपूर्वकरण का जो लास्ट स्थिति कांडक है, लास्ट अनुभाग कांडक है और लास्ट स्थिति बंध जो लगातार चला रहे हैं, सब एक साथ वहाँ समाप्त होते हैं, उसके आगे नए चालू हो जाएंगे। उसका विशेषा फिर पढ़ना है क्या? हाँ ठीक है, देखो विशेषा, हाँ देखो देखो हमने क्या क्या देखे थे अपूर्वकरण में, विशेषता क्या थी। तो पहले समय में किसी की स्थिति ज़्यादा थी, किसी की कम थी, स्थिति कांडक भी किसी के बड़े थे, किसी के छोटे थे, तो जितनी स्थिति है उसके अनुसार वहाँ स्थिति कांडक का प्रमाण था, ये तो हमने देख ली। और स्थिति अलग अलग होने के कारण भी उन्हें भी स्तर से देखे। एक बात ये भी हो गई, जो जितना पहला स्थिति कांडक है दूसरा उससे छोटा होगा, यानी आयाम उसका आगे कम होते चला जाएगा। इस तरह से अपूर्वकरण के काल में संख्या 1000 स्थिति कांडक घात होते हैं और एक एक स्थिति कांडक घात के काल में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं। अब सब में जो लास्ट वाला स्थिति कांडक घात है, लास्ट वाला अनुभाग कांडक है, लास्ट वाला स्थिति बंध है, वे एक साथ समाप्त होते हैं। सबकी समाप्ति पूर्णता एक साथ होती है कब? अपूर्वकरण के अंतिम समय में। इसी का विशेषार्थ देखते हैं हम 37 पृष्ठ पर। यहाँ उक्त सब कथन का तात्पर्य यह है कि अपूर्वकरण के प्रथम स्थिति कांडक का जितना आयाम है उससे दूसरे का विशेष हीन है, यानी वो आयाम छोटा है। स्थिति कांडक का काल तो होगा ही कम, परंतु आयाम भी कम होगा। आयाम यानी कितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से देते हैं उसको आयाम कहेंगे, काल भी घटता चला जाएगा उसका। दूसरे से तीसरे का विशेष हीन है यह क्रम अपूर्वकरण के अंतिम स्थिति कांडक के प्राप्त होने तक जानना चाहिए। इस स्थिति कांडक का आयाम का अर्थ होता है कितने निषेकों का अभाव करेंगे कांडक के द्वारा, उसको आयाम कहेंगे। हमने देखा ना पल्ले का संख्या तो अभाव जघन्य था और पहला कांडक अधिक से अधिक पृथक सागर था। पहले कांडक के बाद यथा योग्य उसका पल्ले का संख्या तो अभाव रहेगा, उतना भी घटते चला जाएगा। किंतु इस प्रकार प्रथम स्थिति कांडक के आयाम की अपेक्षा आगे के स्थिति कांडकों के आयाम को देखा जाए तो यानी वो थोड़ा थोड़ा घटता है, परंतु पूर्व करण में कितने स्थिति कांडक होते तो संख्या हजार होते हैं, तो कुछ स्थिति कांडक चले जाने के बाद वो आधा होता है और उस कुछ चले जाने के बाद वो जो कांडक का प्रमाण है उससे भी आधा होगा, उससे भी आधा होगा। तो जब आधा होगा तो उसको गुणहानि कहेंगे, तो ऐसी गुणहानियां भी बहुत है। तो यहाँ कहते हैं कि अपूर्व करण काल के भीतर ही मध्य के स्थिति कांडक का आयाम प्रथम स्थिति कांडक के आयाम से संख्यात गुणाहीन हो जाता, यानी संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कांडक रह जाता है। और इस प्रकार अपूर्व करण के समस्त काल के भीतर संख्यात स्थिति कांडक गुणहानियां प्राप्त हो जाती है। ये गुणहानियां के आगे स्थिति कांडक शब्द लगाया है। निषेक की रचना में भी हम गुणहानि देखते हैं, अनुभाग में स्पर्धकों की रचना में भी गुणहानि देखते हैं। तो गुणहानि का अर्थ ऐसा होता है कि प्रमाण आधा होना। स्पर्धकों में भी जब हम प्रमाण आधे की बात करते हैं वहां भी परमाणु की संख्या लेना, क्योंकि अनुभाग तो नीचे से ऊपर तो बढ़ता चला जाता है, एक एक से बढ़ता है ना प्रतिवर्गना में, तो वहां भी प्रत्येक वर्गना में कितने परमाणु है उसकी संख्या अनुभाग स्पर्धकों में भी। यानी जहां जहां गुणहानि शब्द आता है तो वहां आधा आधा होता चला जाना, ये उसका अर्थ होता है। हाँ ठीक है, संख्या हजार उतनी बार, इसका आगे कुछ गणित नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि उसकी एक गुणहानि भी पल्ले की संख्या, और ऐसी गुणहानियां कितनी है स्थिति में तो असंख्यात है और अनुभाग में कितनी है तो अनंत है। हाँ क्योंकि ये कितने स्थिति कांडक हुए हैं, असंख्यात हजार हुए हैं, तो कितनी कितनी बार आधा आधा हुआ होगा जो कुछ होगा। हाँ अभी संख्या हजार का अर्धच्छेद हर बार आधा नहीं होगा, गुणहानि हर कांडक के बाद गुणहानि नहीं होगी। मान लेते दस कांडक के बाद आधा हो तो ऐसे हजार हो जाए मान लो, तो उस प्रपोर्शन में वहाँ उतना हो जाएगा,
गुणहानि का आयाम भी घटता चला जाएगा ना।
गुणहानि का आयाम नहीं,
क्योंकि
गुणहानि का आयाम हमेशा वैसा ही रखते हैं।
हाँ, पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे
परमाणु की उसके अभी उसके गणित में उलझेंगे नहीं हम, पहले भी उन्होंने एक बार बताया था गुणहानि का आयाम कायम रखते हुए ये यौ मध्य में उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि आधा आधा होने का वो उस विशिष्ट इसमें इतना ही लेना है कि कांडक का जो प्रपोर्शन है जितने निषेकों में कांडक हो रहा है उसका प्रमाण आधा आधा होता है, इतनी बात यहाँ ले, क्योंकि उसके गणित के ऊपर आगे जाने की कोई हमें जरूरत नहीं है।
यहाँ पे नाना जी की अपेक्षा जो अपूर्व करण में कांडक होते वो समान ही होगी अलग बात, उस पर भी वेरिएशन हो सकते हैं।
पहले में तो वेरिएशन है ही
नहीं, पहले में वेरिएशन है पर नंबर ऑफ कांडक,
नंबर ऑफ कांडक तो उतना ही रहेगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही है सबका, सबका काल समान है अपूर्व करण का, तो कांडक भी उतने ही होंगे।
अपूर्व करण का टाइम सब भी समान है और स्थिति कांडक का काल भी समान है।
हाँ, और केवल पहला जो कांडक है उसका प्रमाण अलग है, पहले कांडक का, बाद में तो समान होगा। दूसरी विशेषता यह है, पहली विशेषता क्या बताई, संख्या स्थिति कांडक गुणहानियां होती थी। दूसरी विशेषता यह है यहाँ सर्वत्र प्रत्येक स्थिति कांडक का काल और स्थिति बंधक का काल समान होता है, ये क्या बात बताई, ख्याल नहीं आएगा? नहीं तो अपूर्वकरण का काल समान सिद्ध नहीं होगा?
नहीं।
इसका तात्पर्य है अपूर्वकरण में जितने स्थिति कांडक घात होते हैं उतने ही स्थिति बंधापसरण भी होते हैं, यानी यहाँ स्थिति कांडक का काल और स्थिति बंध का काल समान है। स्थिति कांडक घात का काल इज इक्वल टू स्थिति बंध का काल, क्योंकि दोनों का काल समान है। तीसरी विशेषता यह है एक एक स्थिति कांडक घात के काल में, यानी जितने काल में एक स्थिति कांडक का घात होता है उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं, हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं। चौथी विशेषता यह है कि अपूर्वकरण काल के समाप्त होने के साथ वहां प्राप्त अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल, स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल यानी इन दोनों की अंतिम फाली गिरेगी उस समय, और स्थिति बंध काल यानी यह अंतिम समय होगा उतनी स्थिति का बंध होने का, बाद में नया बंध शुरू होगा, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। यहाँ तक तो अपना हुआ था ना कल, अब यहाँ पढ़ेंगे आगे। इस प्रकार अपूर्व करण में स्थिति कांडक आदि की प्ररूपणा समाप्त करके अब वहीं पर, वही करें अपूर्व करण में ही स्थिति सप्तमगत विशेषता का कथन करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं, यानी वहाँ स्थिति सत्कर्म कितना है, सत्ता में जो कर्म है उसकी स्थिति कितनी है उसको बताएंगे। चरिम समय अपूर्व करणे स्थिति संत कम्मम थोवम, अपूर्व करण के अंतिम समय में स्थिति सत्कर्म थोड़ा है, क्योंकि वो तो कांडक द्वारा घटाते घटाते आया है तो कम रह गया है अंत में, जितना स्टार्टिंग में था उससे कम होता चला आया है, क्योंकि संख्यात हजारों स्थिति कांडकों का घात होकर उक्त प्रमाण स्थिति सत्व शेष रहा है। अब कहते पढ़म समय अपूर्व करणे स्थिति संत कम्मन संख्यज्य गुण, उससे अपूर्व करण के प्रथम समय में स्थिति सत्कर्म संख्यात गुण है, दोनों जगह कहेंगे तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर, शुरू में जितना था उसका संख्यात वा भाग रह गया, क्योंकि अपूर्व करण रूप परिणामों के द्वारा अभी उसका घात नहीं हुआ है, इतनी विशेषता है। क्या कहा, प्रथम समय में कितना है स्थिति सत्व, अभी उसका घात नहीं हुआ है, भले पहले समय में पहली फाली भी क्यों नहीं गिरी, स्थिति तो उतनी ही है, क्योंकि फाली तो उतनी स्थिति में से ही चलती रहेगी, अंतिम फाली गिरेगी तब जाके कहेंगे कि स्थिति का घात हो गया, अभी घात नहीं हुआ है। अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा अभी तक तो स्थिति यानी शुरू होगा कार्य पर अभी हुआ नहीं है, इतनी विशेषता है कि अपूर्वकरण के अंतिम समय में ज्ञानावरणादि कर्मों का स्थिति सत्कर्म अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही है। परंतु विशेष घात के कारण दर्शन मुनि कर्म का अंत कोड़ा कोड़ी के भीतर लक्ष्य पृथक्त्व सागरोपम है, ये कितना हो गया उसका लक्ष्य पृथक्त्व सागर, क्योंकि यहाँ दर्शन मुह की क्षपणा के योग्य परिणाम है तो उसमें दर्शन मुह की स्थिति ज्यादा घटेगी। हम केवल जिसको कहेंगे करण परिणाम है ऐसा कहेंगे तो हर जगह करण परिणाम है, परंतु कुछ परिणामों से तो अनंतानुबंधी की विसर्जना होती है, कुछ करण परिणामों के द्वारा दर्शन मुह की जो क्षपणा होती है उस काल में दर्शन मुनि की स्थिति घटी है, अन्य ज्ञानावरणादि उस उतनी नहीं घटी है, ये बताना चाहते हैं, यानी विशिष्ट परिणाम से विशिष्ट ही कार्य होगा वहां पर। तो दर्शन मुनि की कितनी रह गई, लक्ष्य पृथक्त्व सागरोपम यानी पृथक्त्व लाख सागर। अपूर्व करण के प्रथम समय में ज्ञानावरणादि कर्म विषय स्थितिबंध भी इसी अल्पभूतव विधि के अनुसार होता है, इस विषय का कथन करना उत्तर सूत्र का प्रयोजन है। इसी विधि ने क्या है, अभी हमने क्या देखा था, अपूर्वकरण के अंतिम समय में स्थिति तत्व कम है और पहले समय में संख्या गुणा है। अब आगे के सूत्र में कहेंगे, वो तो स्थिति तत्व की बात हुई थी, अब यहाँ कहते कि ठिदी बंधोवी पढ़म समय अपूर्व करणे बहुगो चरिम समय अपूर्व करणे संख्येच गुणहीन। अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थितिबंध भी बहुत होता है तथा अपूर्वकरण के अंतिम समय में संख्या गुणाहीन होता है। यहाँ बंद की बात है, पहले सत्ता की बात देखिए, क्योंकि स्थितिबंधापसरण होने के कारण स्थितिबंध के उक्त प्रकार से सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं पाई जाती, इस प्रकार अपूर्वकरण प्ररूपणा समाप्त हुई। लक्ष्मीबेन स्थिति तत्व कैसे घटा, किस कारण घटा स्थिति का तत्व? नहीं नहीं, इसमें क्या विशेष कारण, कार्य क्या हुआ? कांड घट। और स्थिति बंध क्यों घटा? स्थिति बंधापचरण। ये बात ख्याल में आती, स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति यानी सत्ता की, जो सत्व की स्थिति, स्थिति सत्व कहो या सत्व स्थिति कहो, वो घट गई। क्योंकि कांडकों के द्वारा बहुत सारे निषेकों का अभाव एक साथ हो जाता है एक एक अंतर्मोल, और बंधापसरण से क्या होगा, नया होने वाला स्थिति बंध घटते चला जाता है। ख्याल में, वो तो नया होने वाला बंध जो है वो स्थिति से संख्या से भाग तो है ही है, वो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में घटते चला जाता है, उसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण। यानी स्थिति बंधापसरण के द्वारा स्थिति बंध घटता चला जाता है और स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति सत्व घटता चला जाता है। ये इस तरह से अपूर्वकरण की बात हो गई यहाँ पर। अब कहते हैं, पढ़म समय अनियट्टीकरण पवित्ठस्य अपूर्वम थिदि खंडयम अपूर्वम अनुभाग खंडयम अपूर्व थिदि बंधो तहा सेव गुण सेड़ी। यानी यहाँ अभी अनिवृत्तिकरण में आने पर नई शुरुआत होगी, नया स्थिति कांडक घात शुरू हो जाएगा, नया अनुभाग कांडक घात हो जाएगा, स्थिति बंध का प्रमाण भी नया यानी घटकर और होगा, और यहाँ की गुण श्रेणी कहा वो भी तहा सेव गुण श्रेणी, जहाँ चेवन वो पूर्वोक्त ही होती है, वही गुणश्रेणी चलेगी। क्योंकि शुरुआत में जो हुई थी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण प्लस थोड़ा भाग, ऐसी शुरू हुई थी, गुणश्रेणी तो वही रहेगी, गलित होकर जितनी अवशेष रही है उतनी। देखो हिंदी में पढ़ेंगे हम, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट हुए जीव के, प्रविष्ट हुए ने पहला समय प्रारंभ कर दिया, अपूर्व स्थिति कांडक होता है। ये अपूर्व शब्द लगाने से वो अपूर्वकरण की बात नहीं है, अपूर्व है ने अभी जो अपूर्वकरण के अंतिम समय में थी उससे अन्य, इसका प्रपोर्शन अलग होगा। अपूर्व है ने पहले नहीं हुई थी, यानी यहाँ के और छोटी होगी, आयाम छोटा होगा उसका और उसमें द्रव्य अधिक दिया जाएगा। अपूर्व अनुभाग कांडक होता है, अपूर्व स्थिति बंद होता है तथा गुणश्रेणी पूर्वोक्त प्रकार की ही होती है।
यहाँ पे गुणश्रेणी में निक्षेप अवली को छोड़कर होगा कि क्योंकि हमने आगे देखा था, कल देखा था कि अवली को छोड़कर उस पर गुणश्रेणी रूप निक्षेप होता है।
हाँ,
तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि पूरी गुणश्रेणी नीचे आ जाएगी,
बाहर ही होगा ना, वही गुणश्रेणी का अर्थ क्या है,
अवली के ऊपर ही।
हाँ, अवली के ऊपर ही हो। देखो यहाँ से आगे अनिवृत्तिकरण विषय प्ररूपणा जाननी चाहिए, उसमें अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अपूर्वकरण के अंतिम स्थिति कांडक से विशेष हीन अन्य स्थिति कांडक होता है। अब यहाँ का कांडक और छोटा होगा, किंतु वह जघन्य स्थिति सत्कर्म के साथ उपस्थित हुए जीव के जघन्य होता है और उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ उपस्थित हुए जीव के उत्कृष्ट होता है। अच्छा, अनिवृत्तिकरण में वो अभी समान हो जाएगा, अभी तक तो थोड़ा। हाँ, तथा जघन्य से उत्कृष्ट संख्यात्वा भाग अधिक होता है। अपूर्वकरण में जघन्य से उत्कृष्ट तो वैसे भी संख्यात्वा था, वहाँ पल्ले के संख्यात्व भाग से लेकर सागर पृथक्त्व था, अब यहाँ यथायोग्य संख्यात्व भाग अधिक है। परंतु द्वितीयादि स्थिति कांडक सभी जीवों के सदृश होते हैं। ये अनिवृत्तिकरण की यह स्पेशलिटी है, क्योंकि सभी परिणाम भी सदृश, अब यहाँ कांडकों का प्रमाण भी सदृश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उनके विसदृश होने का कारण नहीं पाया जाता। यह दर्शन मुंह की अपेक्षा कहा है, शेष कर्मों का जानकर कहना चाहिए। वही अनिवृत्तिकरण के प्रसन्न समय में अन्य अनुभाग कांडक होता है, क्योंकि अपूर्वकरण परिणाम के द्वारा अंतिम समय में घात करने से शेष रहे अनुभाग सत्कर्म का अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग अनुभाग कांडक रूप से ग्रहण किया। हर बार हमने ऐसा देखा था, अनुभाग कांडक में क्या होता है, अनंत बहुभाग नष्ट होता है, अनंत भाग रहता है, जो रहा उसका अनंत बहुभाग चला जाता है, अनंत भाग रहता है, जो रहा उसका भी अनंत बहु, ये हर समय ऐसा ही चलता है, हर अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में। यहाँ भी और जितना अपूर्वकरण के अंतिम समय में जितना शेष रहा था उसका अनंत बहुभाग कांडक रूप से ग्रहण किया। स्थिति बंधक ही अपूर्व होता है, क्योंकि अनंतर अधस्तन स्थिति बंध से, ये अनंतर अधस्तन स्थिति बंध क्या होता है मंजू जैन? आपको मालूम? नेक्स्ट में पूर्व अधस्तन ने नीचे का, यानी अपूर्वकरण से यहाँ कंपेयर कर, अपूर्वकरण का अंतिम समय अनंतर अधस्तन स्थिति बंध से, यानी अपूर्वकरण के अंतिम समय से, अभी हम कहाँ आए हैं, अनिवृत्तिकरण के पहले समय में, उसके लिए अधस्तन क्या होगा, अपूर्वकरण का अंतिम समय अनंतर अधस्तन यानी अनंतर पूर्व
अपूर्वकरण का लास्ट समय।
स्थितिबंध से पल्योपम का संख्यात्व भाग हीन स्थितिबंध वहाँ पर ग्रहण किया। वहाँ लक्ष्य पृथक्त्व सागर देखा था, उसमें भी और पहले का जितना कांडक का प्रमाण था ना, उससे भी हीन हो जाएगा ये। सॉरी, यहाँ बंध की बात चल रही है, बंध की बात चल रही, तो वहाँ जितना बंध था उससे भी पल्ले का संख्यात्व भाग कम होगा। परंतु गुण श्रेणी पहले के समान ही
गलित अनुभाग तो अनंत भाग हो जाएगा ना अनुभाग में।
अभी हमने स्थिति बंध पढ़ा, उसके ऊपर के दो लाइन में लिखा था,
अच्छा अनुभाग
शेष रहे अनुभाग सत्कर्म का अनंत भूभाग, और ये पल्ले की बात की वो स्थिति बंध में की, स्थिति सत्व की बात तो पहले बता चुके थे। अब कहते गुण श्रेणी पहले के समान ही गलित शेष आयाम वाली, गलित शेष है गलित होने पर जो बाकी बचती है, क्योंकि उसका एक एक निशे को उदयावले में प्रवेश कर जाता है, और जितनी शेष बची उतने निशेकों में गुणित प्रमाण से वो द्रव्य दिया जाता है। तो गलितावशेष गलित शेष आयाम वाली क्या लिखा है अश्विन भाई? उदयावली आपका प्रश्न था ना, उदयावली के बाहर निक्षिप्त की, जो कि पिछले समय की अपेक्षा असंख्यात गुणे परिमाण को लिए हुए निक्षिप्त की। असंख्यात गुणा निषेकों में नहीं, असंख्यात गुणा द्रव्य, परमाणु जितने निक्षिप्त हुए, क्योंकि गुण श्रेणी में ऐसा ही है, हर समय जो उपकर्षित हुए परमाणु की संख्या असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होती है। निषेकों में असंख्यात गुणा दिया ही जाता है, परंतु जो अपकर्षित होने वाला जो द्रव्य है परमाणु है वो भी असंख्यात गुणा हो जाते हैं, और हर बार गुण श्रेणी एक एक निषेक से घटती है, और उसमें माल कितना आता है, असंख्यात गुणा आता है, यानी उन परमाणु में उन निषेकों में ऑलरेडी हर समय हमने कुछ ना कुछ गुण श्रेणी रूप से वहाँ दिया ही था, अब यहाँ और भी ज्यादा मिलेगा, जब वो उदय में आएंगे तो कितना असंख्यात समय प्रबद्ध हो जाएगा। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का गुण संक्रम भी, अभी एक क्षपणा का कार्य है तो इनका गुण संक्रम चल रहा है, उसी प्रकार प्रवृत्त रहता है, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। एक गुण संक्रम कब शुरू हुआ था? मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व का लक्षण है, अपूर्व करण
से पहले।
उसके पहले क्या था? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना है अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का और समय मिथ्यात्व का संक्रमण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा
था।
आप क्या कहते हैं? हो रहा था। कौन सा हो रहा था?
विद्या
संक्रमण। संक्रमण तो है ना, समय दृष्टि है, वैदेशिक
गुण
संक्रमण नहीं था। संक्रमण था कि नहीं समय में? संक्रमण था। कौन सा था? विद्या संक्रमण। वेद समय दृष्टि था ना, यानी उपशम के काल में, उपशम समित्व के काल में शुरुआत में गुण श्रेणी का संक्रमण हुआ, गुण श्रेणी रूप से उसी समय उपशम समित्व के काल में ही वो विद्या चालू हो गया। अब उसके बाद वो वेद समय दृष्टि रहा, तो जब तक वेदक में रहा तब तक विद्या संक्रमण ही चलता रहा। फिर उसने एक सपना प्रारंभ की, तो अध प्रवृत्तिकरण के काल में भी गुण संक्रमण नहीं हुआ था, विद्या संक्रमण ही चल रहा था। गुण संक्रमण कब शुरू हुआ?
अपूर्वकरण।
वो अभी यहाँ पर भी चल रहा है। गुणित प्रमाण में संक्रमित हो रहे परमाणु, पहले विद्या संक्रमण रूप भागार था, अभी गुण संक्रमण भागार। भागार भी चेंज होता है क्योंकि यहाँ असंख्यात भाग होता है वहाँ, तो
प्रति
क्योंकि गुण संक्रमण है ना, भागार छोटा होता चला जाता है, परंतु ये गुणित प्रमाण में संक्रमित होते हैं। हाँ, भागार असंख्यात भाग प्रमाण होगा और परमाणु जो संक्रमित होते हैं वो असंख्यात गुणा हो जाएगा। हाँ, बदलता है गुण संक्रमण भागार बदलते जाते। वो तो कितने द्रव्य दिए, वो गुण श्रेणी की बात है, गुण श्रेणी की बात है। हाँ, होगा होगा, वो आप उसके साथ कंपेयर कर रहे गुण श्रेणी के साथ। यहाँ संक्रमित होना ने पर प्रकृति रूप हो जाना, मिथ्यात्व के द्रव्य गुणित प्रमाण में हर समय गुणित प्रमाण में वो सारा का सारा उसमें चला जा रहा है ना। वो कितने निषेकों में दिया वैसी वहाँ चर्चा नहीं। मिथ्यात्व का द्रव्य समय मिथ्यात्व रूप सभी जहाँ जो उसके इक्वल जो कोई परमा ये हो गए उसके निषेक सब में चला जाएगा। वहाँ हम आकर्षित होता है कि नहीं उसकी चर्चा नहीं करेंगे वहाँ। हाँ, अच्छा, उसका गुणकार का प्रमाण कुछ है ऐसा? विशुद्धि ज्यादा है तो कंटिन्यू गुणकार भी बढ़ेगा क्या?
हाँ,
बढ़ेगा तो सही,
बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो कंटिन्यू बढ़ेगा कि अपूर्व करंट के लास्ट में जो है एकदम जंप लेंगे?
वैसा तो कहीं नहीं है, शायद व्याख्यान आता है गुण संक्रम में। उनका ऐसा सवाल है जिस असंख्यात गुणा क्रम से अपूर्व करण में चल रहा था
उससे अनिवृत्ति कर,
वो असंख्यात गुणा वाला जो प्रमाण है क्या वो असंख्यात का भी प्रमाण बढ़ता है?
अनिवृत्ति कर
गुणकार का प्रमाण भी बढ़ता है, जैसे पहले हमने चार गुणा करते हैं तो यहाँ क्या आठ गुना हो जाए, दस गुना हो जाए, ये आपका प्रश्न है। हाँ, देखो मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व का गुण संक्रम भी उसी प्रकार प्रवृत्त रहता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। सूत्र में इसका निर्देश नहीं होने पर भी अर्थापत्ति गम्य उसका व्याख्यान करने में विरोध का अभाव है। यहाँ तो केवल इतना ही लिखा है उसी प्रकार प्रवृत्ति ने गुण संक्रमण प्रवृत्त रहता है, इतना ही बात बताई उन्होंने। विशेषार्थ अपूर्वकरण के अंतिम समय में जो स्थिति कांडक आदि, आदि यानी अनुभाग कांडक है, स्थिति बंध है, प्रवृत्त थे, वे वही समाप्त हो जाते हैं। और अनिवृत्तिकरण में नया स्थिति कांडक, नया अनुभाग कांडक, और नया स्थितिबंध प्रारंभ होता है, क्योंकि उसके लिए हर एक के लिए अपना अपना अंतर्मुहूर्त लगेगा, यहाँ उसकी शुरुआत हुई। मात्र गुण श्रेणी का क्रम पहले के समान ही चालू रहता है। जैसे पहले अपूर्व करण में गलित शेष आयाम रूप से उदयावली के बाहर गुण श्रेणी का द्रव्य निक्षिप्त होता था, वैसे अब भी निक्षिप्त होता है। और जैसे पहले पिछले समय से अगले समय में गुण श्रेणी में असंख्यात गुणे परमाणुओं का निक्षेप होता था, वही क्रम यहाँ भी चालू रहता है। यहाँ तो इतनी बात बताए, वो असंख्यात का गुणकार का प्रमाण बढ़ता है कि नहीं बढ़ता उसकी चर्चा नहीं है। तथा मिथ्यात्व और संलिंग मिथ्यात्व का गुण संक्रम भी पहले के समान ही होता रहता है। अब आगे अनियठीकरण से पढ़म समय दंशन मोहनियम अपसत्तम उवसामनाय अनुवसंतम शेषाणी कम्माणी उवसंतानी च अनुवसंतानी च। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहनीय कर्म अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत हो जाता है। शेष कर्म उपशांत और अनुपशांत दोनों प्रकार के रहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं देखो, मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जो अप्रशस्त उपशामनाकरण पहले सर्वत्र ही अप्रतिहत प्रसार वाला था, उसका इस सूत्र द्वारा अनिवृत्तिकरण में प्रविष्ट होने के प्रथम समय में ही विनाश कहा गया है।
ये अप्रशस्त उपशब्द जाता है तो प्रशस्त उपशब्द होता है इसे?
नहीं, नहीं।
वो तो नहीं होगा यहाँ पे,
अभी बताएंगे ना क्या होता है। अभी तो हमने शुरू किया विषय, क्या कहते हैं पहले क्या हो रहा था? अप्रशस्त उपशम चल रहा था। वैसे यहाँ सम्यक्त को भी क्यों लिया अप्रशस्त उपशम में? सम्यक्त का तो उदय था। चलो पहले पढ़ लेते, पहले आगे का फिर विशेषार्थ भी पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं कि अप्रशस्त उपशमना किसे कहते हैं, ये वाक्य फिर दोबारा बाद में पढ़ेंगे, पहले चर्चा समाधान चलेगी। तो अप्रशस्त उपशमना किसे कहते हैं? समाधान, कितने ही कर्म परमाणुओं का बहिरंग अंतरंग कारणवश उदीर्णा द्वारा उदय में अनागमन रूप, यानी उदय में नहीं आना, उदीर्णा होकर उदय में नहीं आना, प्रतिज्ञा को अप्रशस्तोपशामना कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं। हाँ, कर्म भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि नहीं जाऊंगा, यानी उदीर्णा द्वारा उदय नहीं होना उसको अप्रशस्तोपशामना कहिए। इस प्रकार की प्रतिज्ञा इस समय नष्ट हो गई, क्या कहते हैं? अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत हो गया, दो निगेटिव आ गए, यानी अप्रशस्त उपशामना नहीं रही। क्योंकि सभी स्थितियों के सभी परमाणु अपकर्षण द्वारा उदीर्णा करने के लिए समर्थ हो गए हैं। ओ, यह उक्त कथन का भावार्थ है। उक्त तीनों प्रकृतियों की केवल अप्रशस्त उपशामना ही विच्छिन्न नहीं हुई, मात्र इतना ही नहीं हुआ, किंतु दर्शन मोहतृक के निधत्तीकरण और निकाचितकरण भी नष्ट हो गया। ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि वे भी अप्रशस्त उपशामना के भेद हैं। ये निधत्तीकरण और निकाचितकरण नष्ट हुए, उसका अर्थ क्या है? अब तक निधत्ते और निकाचित रूप से थे, इसका अर्थ ऐसा है जिसकी जो स्थिति बंदी थी, कुछ निषेक तो अपकर्षण द्वारा नीचे आते हैं, निषेक नहीं, कुछ परमाणु नीचे आते हैं, और कुछ अपनी स्थिति में बने रहते हैं। क्या कहा? कुछ परमाणु अपनी अपने निषेक की स्थिति छोड़ते नहीं, वहीं पर बने रहते हैं, और उसमें से कुछ नीचे भी आते, ऊपर भी चले जाते, पूरा का पूरा निषेक तो नीचे नहीं आता है। तो जो परमाणु अपनी जगह छोड़ते ही नहीं है तो उसको कहेंगे वो निधति निकट, यानी उसका अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण वगैरह यथायोग्य नहीं होता है, उसको ये निधति निकाचित कहते हैं। यानी निधति निकाचित किसी कर्म का नाम नहीं है, उसी कर्म में कुछ परमाणु ऐसे होते कि जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, बस उसी का नाम है। अब यहाँ क्या होगा, अपकर्षण वस्तु सभी नीचे आएंगे ही आएंगे, तो निधत्ति करण नष्ट हुआ, निकाचित करण नष्ट हुआ, किसमें? दर्शन मोनी में, अन्य कर्मों में नहीं, स्थिति कांडक में हुआ। परंतु अभी उसके नीचे जो है वो कुछ स्थिति में ऐसे कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसकी बात है यहाँ। तो अभी सभी परमाणुओं में वो निरतिपना चला जाएगा। वो वैसे वैसे रहना नहीं बनेगा, अभी वो सब नीचे आएंगे आएंगे। वैसे मेरे ख्याल से कांडक घात से ही वो निरतिपना नष्ट होना चाहिए था, पता नहीं। हाँ, ऐसा क्यों लिखते पता नहीं है, ये शायद वहाँ वहाँ केवल अपकर्षण होता होगा, उदय में नहीं आते होंगे, नहीं समझे। कांडक के द्वारा मात्र नीचे आए, पर उदीर्णा होकर उदय में आना वो यहाँ चालू होता है। केवल अपने नीचे के निशे को माना अलग बात, और उदयावली के समय से देना अलग बात, ऐसा होता होगा। नीचे नहीं आए, ये ऐसा ही होगा।
पर तो अपूर्व करण में तो हमने ऐसा देखा ना कि असंख्यात भाग उदयावली में दीक्षित होता है, और असंख्यात बहुभाग तो गुण श्रेणी में दीक्षित होता है। तो यहाँ पे तो ये सब शुद्ध है, ऐसे बताते हैं। तो कोई भी परमाणु के लिए नहीं बातें, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जहाँ पे स्थित है वहाँ से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, उसी की बात होगी।
हाँ, उसी को तो निधत्ति निकाचित कहा। निधत्ति निकाचित सभी परमाणुओं को नहीं कहते।
हाँ,
कुछ परमाणुओं
को, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो स्थिति छोड़कर नहीं।
देखो ये विशेषास में बताएंगे शायद, पता नहीं, क्योंकि वे भी अप्रशस्त उपशामना के भेद है। वो भी अप्रशस्त उपशामना है ना, अपनी जगह छोड़ते नहीं करते क्या है, वो उदीर्णा होकर उदय में भी नहीं आ सकते। शेष कर्मों की अप्रशस्त उपशामना, उपशांत और अनुपशांत दोनों प्रकार की जाननी चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पर पूर्व प्रतिज्ञा के त्याग बिना ही अवस्थान बना रहता है। यानी अन्य कर्मों में जो कुछ निधत्तिपना होगा, निकाचितपना होगा, या विशिष्ट स्थिति के उदय रूप नहीं आना का जो कार्य चल रहा हो वो तो बनता चला है, उसके लिए यहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं, वो तो जाके श्रेणी में उसकी बात होगी। यानी वो सभी कर्मों में निधत्ति निकाचित नहीं लगे, विशिष्ट कर्मों में ही लगे। यानी यहाँ जो निधत्ति निकाचित नष्ट हुआ कहा, वो दर्शन मुनि के बारे में विशेषा। दर्शन मुनि की क्षपणा करते समय अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करने के पूर्व तक सर्वत्र मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के कितने ही परमाणुओं के यथास्थान यथासंभव अप्रशस्त उपशामनाकरण निधत्तिकरण और निकाचितकरण चालू रहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि उक्त करण में प्रवेश करने के पूर्व तक सर्वत्र दर्शन मोनीय त्रिक के कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो उदीर्णा रूप से उदय के अयोग्य होते हैं। कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो उदीर्णा रूप से उदय के अयोग्य और संक्रम के अयोग्य होते हैं। उदय और संक्रम नहीं होता, यानी वो निकाचित कहेंगे, निरति कहेंगे। वो वो अभी बताएंगे। कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो इन दोनों के साथ उपकर्षण अपकर्षण के भी अयोग्य होते हैं, ये निकाचे। नहीं, केवल उपकर्षण नहीं, इन दोनों के साथ उपकर्षण अपकर्षण, यानी वो चारों जिसमें नहीं होता या अयोग्य होता है वो निकाचित, निदति और फिर निकाचित नाम आता है ना, निदति निकाचित। उदय के अयोग्य और संक्रम के अयोग्य, यानी ये नहीं होता उनमें, उदीर्णा से उदय भी नहीं होता और अन्य प्रकृति रूप संक्रमण भी नहीं होता। हाँ, तो उसमें अपकर्षण उत्कर्षण चलेगा निधति में, पर उदय नहीं होगा। उदय के अयोग्य बताए ना, अप्रशस्त उपशम के योग्य है, अप्रशस्त उपशम होता रहता है, उदीर्णा के द्वारा उदय होने वाले की बात। हाँ, देखो, एक तो जो उदय में नहीं है वो सबको हम कहेंगे अप्रशस्त उपशम, जैसे अनंतानुबंधी है, दर्शनों की उपशमना चल रही है। मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ का नहीं, हमने प्रथम उपशम सीख लिया है, उसमें क्या होता है, मिथ्यात्व में तो अंतर पड़ता है, प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति हो गई, और मिथ्यात्व का तो बाद में अंतर के बाद क्या हो जाएगा, अंतर के बाद ऊपर के उपशमित हो जाएगा, अंतर अंतर के जो निषेक है उसका अभाव हो गया, वहाँ जीव आ गया है, तब कहेंगे उसके सारे उपशमित है, परंतु वो उपशम कैसा है, तो प्रशस्त उपशम है, अंतर के पश्चात होने वाला उपशम, अंतरकरण रूप उपशम भी कहा है कहीं। अनंतानुबंधी में क्या हो रहा है, उसमें निषेकों में कोई अभाव नहीं हुआ है, अंतर नहीं पड़ा है,
उदय के
तो उसमें क्या मात्र उदय नहीं हो रहा, उदय के समय के एक समय ऊपर वो पड़ा है अनंतानुबंधी, उदय में आते आते वो अन्य रूप होकर उदय में आता, उसको क्या कहेंगे, अप्रशस्त उपशम, अपने रूप से उदय में नहीं आ रहा, बस इतनी बात। हाँ, सदवस्था रूप उपशम, एक क्षोपशम जो घटित होता है ना, क्षोपशम
यहाँ पर जो है,
हाँ,
नहीं हुआ इसलिए,
नहीं नहीं, यहाँ तो बस उदय के अयोग्य है, उदय के अयोग्य है, अंतर की बात ही नहीं है, अप्रशस्त उपशम जिसका उदय नहीं, वो सारे अप्रशस्त उपशम ही कर रहा,
अपने रूप उदय के योग्य नहीं है, ऐसा कह सकते,
बिल्कुल
अपने रूप उदय के योग्य नहीं।
अभी जो पहले दूसरे समय में जो आया है उदय, उदय के दूसरे समय में स्थित है, अपने रूप से नहीं होता है,
पर रूप से होता है,
जैसे वेदक समय तो चल रहा है, उदय किसका है, समय प्रकृति का, उस समय मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व का क्या है, अप्रशस्त उपशम, जब समय दृष्टि हुआ है, इवन उपशम समय दृष्टि हुआ है, तो अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है वहाँ पर, अप्रशस्त उपशम चल रहा है,
ऊपर रूप से
अभी हमारा मति ज्ञान चल रहा है, मति ज्ञान चल रहा है, तो उदय के उपशम है,
सर्व का उदय है मति ज्ञान,
सर्वघाती का अप्रशस्त उपशम,
वो तो उदय भविष्य ही कहेगा ना,
वही तो है ना,
सर्वघाती स्पर्धक का उदय भविष्य,
उसको क्या कहेंगे हम, अप्रशस्त उपशम, अपने रूप से उदय में नहीं आ रहा, देशघाती होकर उदय में आ रहा है, सभी कर्मों में होता है ये ऐसा, अप्रशस्त उपशम जो उदय रूप नहीं है वो सारे परमाणु कैसे अप्रशस्त उपशम है, यानी उसमें कोई और कंडीशन नहीं डाल रहे, बस अभी उसका उदय नहीं है, उदय का नहीं, उदय में नहीं आने को ही वहाँ अप्रशस्त उपशम कहेंगे, अभी अपने रूप से नहीं आता पर रूप से, वो तो अलग बात है, यहाँ उसका उदय नहीं है ये बात लेनी। तो यहाँ क्या कहते हैं, दर्शन मुनि में अब तक क्या हो रहा था, जब वेदक समय तो चल रहा था, तो मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व का अप्रशस्त उपशम चल रहा था, तो अब यहाँ क्या कहते हैं, ये जो तीन प्रकार बताए, कि अप्रशस्त उक्षम चलता है, निधत्ति होती है और निकाशित होता है। अभी 41 पेज पर तीसरी लाइन, किंतु क्षपक जीव के, यहाँ क्षपक यानी दर्शन मुख का क्षपक लेना है, अनिवृत्ति करण में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही ये तीनों करण नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो हमने सामान्यपने जहाँ कर्मों की अवस्थाएं बताते हैं वहाँ पूर्व कर्म परिणामों से निधत्तिपना नष्ट हो जाता है, निधत्तिकाचितपना ये सब वहाँ आता है, क्योंकि वहाँ से स्थिति कांडक शुरू होते हैं। तो स्थिति कांडक यानी उन परमाणु में कुछ, उन निषेकों में कुछ परमाणु ऐसे थे कि जो अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, तो स्थिति कांडक के बिना वो कैसे वहाँ से हटेंगे, ये वहाँ घटित होता है। यानी कहीं कहीं आता है ना, जिन्हें बिंब दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्मों का चूरा होता है, ऐसा कहीं कहीं कहने में आता है कथन। तो वहाँ तो ये जहाँ अपूर्व करण परिणाम होते हैं वहाँ से ये बात शुरू होती है, क्योंकि स्थिति कांडक वहाँ से शुरू हो जाता है। किंतु क्षपक जीव के अनिवृत्ति करण में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही ये तीनों करण नष्ट हो जाते, ये करण की विच्छुति हुई यहाँ पर, नष्ट होते हैं अपूर्व करण के अंत, अपूर्व करण में इन करणों की विच्छित्ति हुई ऐसा कहेंगे। अपूर्व करण में है, अनिवृत्ति करण में प्रवेश करने पर ये नो मोर, यानी वो नष्ट हुए, यानी अभी उसमें निधत्तिपना भी नहीं रहा, निकाशितपना भी नहीं रहा। जैसे हम कहते हैं ना, मिथ्या तो के बंध की विच्छित्ति कहाँ हुई, पहले गुणस्थान में हुई, पहले गुणस्थान में बंध है, ऊपर नहीं है, वैसे निधत्तिपना और निकाशितपना कहाँ नष्ट हुआ,
अपूर्व करण के अंतिम समय
नष्ट कहाँ हुआ, अंतिम समय तक है,
पहले समय
हाँ, अभी वो तो कथन में भेद है, द्रव्यातिक पर्यायातिक। हाँ, करण यानी ये जो ये इसको अलग अलग को दस करण कहते हैं ना, अप्रशस्त उपशम, निधत्तिकरण और निकाचित करण, ये कर्मों के जो दस करण कहते हैं, दस अवस्थाएं हाँ, बंद, उदय, सत्ता वगैरह जो है, उपशम, संक्रमण, हाँ, निधत्ति और निकाचित, ये जो है अवस्थाएं, उसको अप्रशस्त उपशम, निधत्ति और निकाचित, तीन करण यानी ये दस करण में से तीन करण की बात है। बाकी बंद की सत्ता की वो तो बात करी, हाँ हाँ, यानी ये करणों की यहाँ अभी ये नष्ट हो गए, उसकी विच्छित्ति हम अपूर्व करण में कहेंगे, यानी अप्रशस्त उपशम, निधत्ति और निकाश, ये सारे करण कहलाते हैं।
ये कर्मकांड की भाषा में अपन अपूर्व करण में बोलेंगे, और जयरवला की भाषा में अपन पर्याप्त बोलेंगे।
हाँ, यहाँ नहीं हुए, नष्ट हुए करें, परंतु विच्छित हम अपूर्व करण में कहेंगे, जहाँ नष्ट यानी यहाँ नहीं पाए जाते, तो कहाँ तक पाए गए, अपूर्व करण के अंतिम, तो वहाँ उसकी विच्छित भी कहेंगे। हाँ, यानी अभी यहाँ नहीं है, नवे में वो नहीं पाए जाएंगे, यहाँ सूत्र में केवल अप्रशस्त उपशामना करण के नष्ट होने का निर्देश किया है, और टीका में इसके साथ निधत्तिकरण और निकाचित करण के नष्ट होने का भी निर्देश किया है। ख्याल में आई बात, ऊपर सूत्र में क्या लिखा था, अभी सूत्र फिर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ख्याल में आएगा। 40 पेज पर अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहनीय कर्म अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत हो जाता है, यानी उसका अप्रशस्त उपशम नष्ट हो जाता है। हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। तो टीका में तो दोनों बताए, विधत्ति और निकाचित करण भी नष्ट होते हैं। प्रश्न यह है कि चूर्णी सूत्र में ही उक्त तीन करणों के नष्ट होने का निर्देश क्यों नहीं किया। इसका जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि निधत्ति और निकाचित करण का अप्रशस्त उपशमना के भेद स्वीकार करने से, भेद रूप से स्वीकार किया, यानी वो भी अप्रशस्त उपशमना के ही भेद है, इसलिए अप्रशस्त उपशमना कहने से तीनों का ही उसमें गर्भित हो गए, तीनों ही उनका भी ग्रहण हो जाता है। क्योंकि व्यापक दृष्टि से विचार करने पर उक्त दोनों करणों का भी अप्रशस्त उपशमना में ही अंतर्भाव हो जाता है, वो भी अपनी जगह नहीं छोड़ते तो उदय ना होकर उदय में कैसे आए, इसलिए वो भी अप्रशस्त उपशमना के ही भेद है। 58 नंबर का पैराग्राफ तो फिर पढ़ेंगे। हाँ देखो, जो हमने 40 पृष्ठ पर पढ़ के फिर कहा था, फिर बाद में पढ़ेंगे। मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जो अप्रशस्त उपशामनाकरण पहले सर्वत्र ही अप्रतिहत प्रसार वाला था, अप्रतिहत यानी वो तो चालू रहा था, उसका इस सूत्र द्वारा अनिवृत्तिकरण में प्रविष्ट होने के प्रथम समय में ही विनाश कहा गया है। इसका तो वो उदय में आते थे ऐसा नहीं, आते थे ऐसा नहीं, कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, इसको ले लेना। अब आगे बढ़ेंगे, अनियति चलेंगे ना आगे, रहना भी पास होता है या नहीं समझना तो रोकना बीच में, हाँ क्या वो हमारी एक बार गाड़ी छूटती है ना तो बीच में रुकती नहीं, नहीं कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं 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 बोलना बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर बोलना, और डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई घबराना नहीं मेरे से।
नहीं नहीं मैं सुबह ही बोलने वाला था,
पीछे
चालू आपने,
आपको भी फास्ट होता है तो दूसरों की क्या कंडीशन होती होगी।
इस पर बहुत डिटेल
दिया। हाँ देखो, अभी हम आगे का सूत्र पढ़ेंगे। अनियत्तिकरणस्य परम समये दंशन मोहनीयस्य थिरिसंत कम्मम सागरोम सदसहस्य पुधत्त मंतो कोरीय सदसहस्य पहले कितना था लक्ष्य पृथक्त्व देख के आए थे, कहाँ देखा था वो पूर्वकरण के अंत में देखा क्या, पहले कभी देखा था,
पहले समय में बताया था पीछे कोई
प्रथम समय में, अंत समय में 38 पृष्ठ पर 55 नंबर के पैराग्राफ में, हाँ अंतिम समय में कितना होता है तो अंत कोड़ा कोड़ी है, परंतु उसके भीतर लक्ष्य पृथक्त्व सागरोपम था। अब यहाँ बता रहे हैं शत सहस्र, वही बात है ना, उसके अंत समय में तो अंत स्थिति में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतनी स्थिति रहेगी, बात वही है। अपूर्व कर्म के अंतिम समय में लक्ष्य पृथक्त्व कहा, वही बात यहाँ शत सहस्र कह रहे हैं। अनियतिकरण से पढ़म समय दंशन मुनि से थी संत कम्बम सागरोम सदसहस्र पुदत्त मंतो कोड़िये शेषानम कम्बानम थी संत कम्बम कोड़ी सदसहस्र पुदत्त मंतो कोड़ा कोड़िये। शत कोटि सहस्र रोज शत सहस्र सागरोम देखेंगे हिंदी में उसका अर्थ। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म एक कोटि के भीतर शत सहस्र पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण होता है, और शेष समूह का स्थिति सत्कर्म कोड़ा कोड़ी के भीतर कोटि शत सहस्र पृथक्त्व प्रमाण होता है, यानी कितने एक लाख करोड़, समझ में आई बात, कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़ बराबर, अब यहाँ कुछ लाख करोड़ होगा, कोड़ा कोड़ी करते क्या है, करोड़ गुना करोड़,
करोड़।
अब ये कुछ मान लेते 40
करोड़ है, करोड़ है,
हजार रुपए,
हजार
शत सहस रहने लाख, मान लेते 20 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, और उसका कितना होगा शत सहस पुस्तक सागर,
तो हजार सागर, अरे हजार
यानी लाख, लाख सागर, यानी 2 लाख सागर होगा, 4 लाख सागर होगा, 10 लाख सागर होगा, शत सहस्र ने लाख, हाँ करोड़ शत सहस्र ने मान लेते कुछ लाख करोड़,
करोड़
ये लाख करोड़ है, वो ये लाख है, लाख सागर, वो कुछ लाख सागर और कुछ लाख करोड़ सागर, यानी वो एक एक करो ना, एक लाख सागर या पृथक लाख सागर कहो, पृथक लाख सागर और ये पृथक लाख करोड़ सागर, कितने करोड़ है उसके, कुछ लाख करोड़ है,
पृथक लाख
कोटि शत सर, उसके साथ कोटि लगा, लाखों करोड़, शत और सहस्र, शत सहस्र नहीं, ये शत और ये सहस्र एक के ऊपर, एकम धर्म शतम सहस्र लक्ष्य,
लाख करोड़,
हाँ नहीं पृथक्व में कुछ भी संख्या हो सकती है, हमने देखा ना पृथक्व कैन बी एनीथिंग, सामान्य से तो कभी कहीं 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 बताते हैं 7 या 8, कहीं कहते 3 से 9, अभी हमने पृथक या मनुष्य भोग कितने होते हैं तो उसमें तो 95 भी आया है, 47 भी आया है, अलग अलग आया, उसको भी पृथक कह दे, इस सूत्र द्वारा कोटि शत सहस्र पृथक्व सागर, ऊपर भी शत सहस्र पृथक्व सागर लिखा है ना, यहाँ भी सागर की बात है, बीच में सागरोपम लिखना है, यानी कोटि शत सहस्र पृथक्व है ना, उसके ऊपर भी सागर लिखना है, ऊपर नहीं लिखा था उन्होंने, क्योंकि सागर वो कभी कभी अंत कोड़ा कोड़ी कह देते हैं, हम हर बार वो सागर शब्द नहीं लगाते, पर वो समझना योग्य है, यानी ये सागर की बात है यहाँ पर इस सूत्र द्वारा, हाँ हाँ पृथक कहीं पर भी नहीं सकते, पृथक लक्ष्य करोड़ पृथक लाख करोड़ भी कह सकते हैं हम, पृथक कोड़ी लाख ये शब्द आगे पीछे जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सूत्र द्वारा अनुवृत्तिकरण के प्रथम समय में आयु कर्म के अतिरिक्त सब कर्मों के स्थिति सत्कर्म का निश्चय किया गया, उसमें से दर्शन मोनिय का स्थिति सत्कर्म तो एक कोटि के भीतर, मैंने पहले अंतक कोड़ा कोड़ी था, अभी अंतक कोड़ी हुआ है, इसलिए एक कोटि के भीतर कितना हुआ शत सहस्र पृथक्व सागरोपम प्रमाण होकर स्थित होता है, कुछ लाख सागर
पृथक्व लाख सागर,
क्योंकि विशेष घातवश उसकी उस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है, देखो यहाँ पर भी अलग अलग कर्मों में अलग अलग घात द्वारा अलग अलग स्थिति सत्कर्म होगा, पहले तो हमने देखा तो ये सबसे बड़े स्थिति वाला था कर्म, और हर बार उसकी उसी प्रोपोर्शन में स्थिति रहा करती थी,
अभी
तो एक सपना का कार्य चल रहा है उसका, उसकी स्थिति सबसे ज्यादा घटेगी, यहाँ लिखा ना विशेष घातवश, वैसे स्थिति कांड घात सभी कर्मों में चल रहा था, दर्शन मुनि में विशेष घात होगा और उसके परमाणु नीचे के नीचे को में दिए जाएंगे, तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा घटी, यानी करोड़ के भी नीचे हो गए, और बाकी अंतर कोड़ा कोड़ी में ही कुछ लाख करोड़ सागर रहेगी। परंतु शेष ज्ञानावरण आदि सब कर्मों का स्थिति सत्कर्म कोड़ा कोड़ी के भीतर, वहाँ कितना लिखा था कोटि के भीतर, यहाँ कोड़ा कोड़ी के भीतर कोटि शत सहस्र पृथक्त्व प्रमाण हो जाता है, क्योंकि उनके यहाँ विशेष घात का अभाव है। उनका विशेष घात उस सपना में होगा, यहाँ उसका विशेष घात नहीं है, या उच्चम श्रेणी में भी उसका स्थिति कांडक होगा। विशेषण तात्पर्य है कि दर्शन मोह क्षपक अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहनीय का स्थिति सत्कर्म लक्ष्य पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण होता है, यानी जो दर्शन मोहनीय के क्षपणा करने वाला है उसके अनिवृत्तकरण के प्रथम समय में लक्ष्य पृथक्त्व सागर स्थिति रह जाती, और आयु कर्म के अतिरिक्त शेष कर्मों का स्थिति सत्कर्म कोटि पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण होता है। इसको कोटि पृथक्त्व कहा, कोटि शत सहस्र पृथक्त्व है भाई। कोटि के आगे लाख भी, कोटि लक्ष्य पृथक्त्व कहो तो चले, यानी कितने लाख करोड़, वो लाख करोड़ों को भी कितने कोटि कह सकते हैं। आगे का सूत्र तदो, यानी उसके बाद खिदिखंडय सहस्रहिम अनियठी अध्याय संखेज्येषु भागेषु गदेषु असन्निठिदिबंधेन दंशन मोनियस खिदिसंत कम्मम समगम। अभी यहाँ जो दर्शन मोनी का स्थिति सत्कम की बात है, बंध की नहीं, बंध का सवाल ही नहीं है। क्या में जब जब हमने स्थिति बंध की बात की थी तो अन्य कर्मों में लेना है, दर्शन मोनी का तो बंध होने का सवाल ही नहीं है। समय दृष्टि है, अभी तक जो स्थिति बंध की चर्चा आई है वहाँ होने वाले कर्मों के बंध की, जो बंध योग्य प्रकृति है उसकी बात करें। अब यहाँ दर्शन मुनि का सपना में उसके स्थिति सत्कर्म बहुत अधिक घट रहा है, तो पहले अंत कोड़ा कोड़ी था, अभी घटकर अंत कोड़ी प्रमाण हुआ, करोड़ के अंदर हुआ ना, अब और घटेगा, अब कितना रहेगा तो असंगी के योग्य, असंगी का जो बंध है उतना इसका स्थिति सत्व होता है। असंगी के सत्व योग्य नहीं कहा, बंध योग्य, क्यों? असंगी में सत्व ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, संगी में से मरकर असंगी में चला जाएगा तो उसका तो स्थिति सत्व, वो सत्तर कोड़ा को भी अंतर्मूर्ति यथा योग्य कम कर दो उतना हो सकता है, परंतु वो जितना स्थिति बंध करता है तो स्थिति बंध कितना करता है, तो हजार साल, तो अभी इसकी स्थिति कितनी घट गई,
हजार सागर,
लाख पृथक्त्व से कितनी हुई, हजार सागर इतनी रहेगी, स्थिति घट रही है उसकी कांडघात के द्वारा। तो यहाँ कहते हैं असन्नी ठिदिबंधे न दंशन मोहनियस ठिदि संत कम्मम समगम, समगम ने समान होती है, हम हिंदी में पढ़ेंगे नीचे। उसके बाद, उसके बाद अनिवृत्तिकरण का प्रथम समय शुरुआत हो गई, अभी अब वहाँ क्या शुरू हो गए, वो सारे स्थिति कांड घात, अनुभाग कांड घात, स्थिति बंध वगैरह वगैरह, गुण श्रेणी, गुण संक्रम सब चल रहे, ऐसे करते करते संख्यात भाग बीत गया। तो कहते उसके बाद हजारों स्थिति कांडकों के द्वारा अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर, यानी अनिवृत्तिकरण का संख्यात वह भाग शेष रहा, मान लेते हमने पाँच छः भाग करेंगे, पाँच करेंगे तो एक भाग रहा, चार भाग बीत गए, तो क्या होता है वहां पर दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म, एक स्थिति की बात चल रही है यहाँ पर सर्वत्र। असंगी पंचेंद्रिय के आगे क्या लिखा है नितिन भाई, स्थिति बंध के समान होता है, तो असंगी पंचेंद्रिय का स्थिति बंध कितना है, हाँ हजार सागर, कौन से कर्म का, सभी कर्मों का, असंगी को सभी कर्मों का हजार सागर होता है क्या, दर्शन मुनि का, ये दर्शन मुनि का शब्द दोनों में डालना, यानी असंगी को जो हजार सागर बंद होता है, देखो तीन सप्तमांश होगा ना असंगी के ज्ञानावरण का, तीन सप्तमांश होगा हजार का, उसका नाम गोत्र का दो सप्तमांश होगा। नहीं नहीं, इसलिए मैं स्लोली जा रही हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा, अब इस जीव का अनिवृत्तिकरण का संख्या बहुभाग बीत गया, उसके दर्शन मुनि का जो स्थिति सत्कर्म है वो असंगी के दर्शन मुनि के स्थिति बंध के समान, ऐसा लेगा। क्योंकि उसके भी अन्य अन्य कर्मों में अन्य अन्य होता है ना, ये बात आई ना, स्थिति सत्कर्म और स्थिति बंध, ये दोनों शब्द कौन सा कहाँ है वो हमें देखना है। यानी अभी देखो ये सपना का कार्य ऐसा है कि कांड घात होते 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 अन्य कर्मों में अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति चल रही है, और इसमें दर्शन होने की स्थिति बहुत फास्ट घट रही है, अंत कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ी हो गई, अंत कोड़ी से भी सौ सागर हो गए, सॉरी हजार सागर हो गए, फिर आगे बताएंगे सौ सागर हुई, पचास सागर हुई, पच्चीस सागर हुई, एक सागर हुई, फिर और घटी, ये बात चलेगी आगे। तो अभी तो असंगी के योग्य हो गई, असंगी के बंध के समान हो गई, योग्य नहीं कहेंगे, बंध के समान हो गई, इसी का हम स्पष्टीकरण देखते रहे। तत्पश्चात, तत्पश्चात यानी उस पहले समय के पश्चात, प्रथम स्थिति कांडक से लेकर विशेष हीन रूप से बहुत हजार स्थिति कांडकों के द्वारा, बहुत हजार यानी बहुत स्थिति कांडक हुई ना एक बार, हाँ हजारों हो गया, स्थिति सत्कर्म का अपवर्तन करने वाले यानी घटाने वाले जीव के अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर और संख्यात वा भाग शेष रहने पर, वही बात है ना,
संख्यात बहुभाग
इतना गया है ना, इतना भी बाकी है, क्या होता है उस जगह, दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म लक्ष्य पृथक्त्व प्रमाण सागरोपम से क्रमशः घटकर, ये किस विधि से घटा नितिन भाई, अपने आप घट गया, कैसा घटा, क्या प्रोसेस हुआ तो घट गया, स्थिति कांडक घात के द्वारा घटा, पहले हमने देखा था ना स्थिति कैसे घटती है, कांडक के द्वारा घटती, तो क्रमशः घटकर, एक झटके में इतना नहीं घटा, हर कांडक में घटते 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 1000 सागरोपम इतनी शेष रही। तो 1000 सागरोपम बताने के लिए क्या कहते हैं, असंगी जीव जितना दर्शन मुनि का बंध करता है उतना, क्योंकि असंगी जो ज्ञानावरण का बंध करता है उतना नहीं कहा, दर्शन मुनि का करता है उतना कहा, वो हजार सागर, तो असंगी के हजार सागरोपम असंगी के स्थितिबंध के समान हो जाता है, यह इस सूत्र का समुच्चयार्थ, थ के ऊपर रखा देना, समुच्चयार्थ है पूरा उसका, टोटल उसका सरवाड़ उसके, शेष कर्मों का स्थितिबंध और स्थिति सत्कर्म, बंध हमेशा कम ही होगा परंतु दोनों कितने हैं, अनिवृत्तिकरण के काल में सर्वत्र ही अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण ही रहता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ लिखा अनिवृत्तिकरण के काल में, पर ये नौवे गुणस्थान वाला अनिवृत्तिकरण नहीं समझना, दर्शन मोह वाला अनिवृत्तिकरण समझना, क्योंकि वहाँ भी उसके अन्य कर्मों में भी स्थिति बंध स्थिति सत्व इतना घटेगा वहाँ पर। अभी आगे तदो, उसके बाद स्थिति खंडय उदत्तेन चौरिंगीय बंधेन स्थिति संत कम्मम समगम, उसके बाद स्थिति कांडक पृथक्त्व के संपन्न होने पर, यानी अब भी स्थिति कांडक घात चालू है और कुछ स्थिति कांडक होने के बाद, सत्ता कितना था अभी, सत्ता कितनी थी स्थिति का सत्व, हजार सागर था, अब उसमें भी बार 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 वो स्थिति कांडक होते गए, तो कहते चतुरिंद्रिय जीवों के बंध के समान, दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म हो जाता है, यानी हजार सागर से घटकर 100 सागर हो गया। तो एक सागर में तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं
संख्या से,
हाँ, और एक बार कांडक पल्ले के संख्या से भाग होगा, यानी कितने हजार हो गए ना, लाखों हो गए स्थिति कांडक भाग, फिर भी उसको संख्या कहेंगे। तदो ये बात ख्याल में आती है, हजार सागर था अभी घटकर 100 सागर हुआ। तदो ठिदि खंड या पुधत्ते न ती इंद्रिय बंधे न ठिदि संत कम्मम समगम। उसके बाद स्थिति कांडक पृथक्त्व के संपन्न होने पर तीन इंद्रिय जीवों के बंध के समान दर्शन होने का स्थिति सत्कर्म हो जाता है। एक बार बंध कह रहे, एक बार सत्व कह रहे हैं, सत्व दर्शन मोनी की बात चल रही है और बंद दर्शन मोनी का जितना बंद उन जीवों को होता है उसकी बात चल रही है। यानी चतुर्इंद्रिय में तो 100 सागर, तीन इंद्रिय में 50 सागर। तदो ठिदि खंड पुदत्ते न द्वि इंद्रिय बंदे न ठिदि संत कम्मम समगम। उसके बाद स्थिति कांडक पृथक्त्व के संपन्न होने पर द्विंद्रिय के जीवों के बंध के समान, द्विंद्रिय के शब्द क्यों लगाया, के की जरूरत नहीं है, द्विंद्रिय जीवों के समान, ऊपर हर जगह चतुर इंद्रिय जीव, इंद्रिय जीव लिखा था ना, वैसे ही द्विंद्रिय जीवों के बंध के समान दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म हो जाता है। पृथक्व अभी हम इमेजिन कर सकते हैं ना, संख्यात बार मान लेते 4 बार होगा तो एक पल्ले प्रमाण स्थिति घटेगी, तो इतने सागर घटने के लिए
कितने
वो कितने कोड़ा कोड़ी में पल्ले होने चाहिए। अब पृथक्व की वैल्यू बहुत बड़ी है। अभी आगे पढ़ेंगे, तदो ठिदि खंड पुधत्ते न एइंद्रिय बंदे न ठिदि संत कम्मम समगम। उसके बाद स्थिति कांडक पृथक्त्व के संपन्न होने पर एकेंद्रिय जीवों के समान दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म कत्कर्म हुआ स्थिति सत्कर्म हो जाता है। द्विंद्रिय के वहां 25 सागर था, अब यहाँ कितना हुआ, एक सागर। हाँ, ये सूत्र सुगम है। इतनी विशेषता है, सर्वत्र स्थिति कांडक पृथक्त्व के निर्देश का विपुलता वाची रूप से व्याख्यान करना, विपुलता ने अनेक, कहीं कहीं बहुत थोड़े के लिए भी पृथक्त्व कहेंगे, गिने चुने 3-4-7, अब यहाँ विपुलता वाची व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थिति कांडक पृथक्त्व के बिना विवक्षित चतुरिंद्रिय आदि जीवों के स्थिति बंधों के समान सत्कर्म नहीं हो सकता। यानी वो कितने करोड़ों में चली जाएगी उसकी संख्या, एक बार तो ज्यादा घटता नहीं, पल्ले का संख्या तो अभाग घटेगा, तो संख्यात बार हो जाएगी तो पल्ले प्रमाण घटेगा, अब उसमें भी 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, तो नहीं, एक सागर घटने के लिए कितने कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, और मान लेते 4 भाग भी करेंगे संख्या का भाग,
40 कोड़ा कोड़ी,
वो तो 4 से भी ज्यादा होगी, परंतु 40 कोड़ा कोड़ी एक सागर के लिए, तो जब 1000 से 100 का आया, 100 से 50 का आया, 50 से 25 का आया, इतने सागर घटे, उसको भी यहाँ पृथक्त्व कह दिया है।
वो तो एक सागर के लिए 40 कोड़ा कोड़ी होता ना,
हाँ,
और यहाँ पे तो एक
कहीं 25 सागर घटे, कहीं 50 सागर घटे,
1000 से 100 हो गया,
हाँ, 1000 से 100 हो गया, 900 घटे, बापरे बाप, यहाँ पर नीचे और ऊपर के स्थिति बंधों का परस्पर अंतर निकाल कर, नीचे और ऊपर के स्थिति बंधों का, यानी जैसे 1000 से 100 पर आ गए तो दोनों का डिफरेंस अंतर कितना, तो 900 सागर, परस्पर अंतर निकाल कर बहुत संख्या विशिष्ट स्थिति कांडक पृथक्त्वों की वियत्ता का परिमाण दिखलाना चाहिए। यानी वहां हम सोच सकते कितने ज्यादा है। अब इससे आगे भी स्थिति सत्कर्म अपवर्तना क्रम से सूत्र के अनुसार जान लेना चाहिए। यानी स्थिति सत्कर्म की अपवर्तना यानी घटना सूत्र के अनुसार जानेंगे हम या बताएंगे पता नहीं है क्योंकि अभी तो घटते घटते कहाँ तक आया है, एक सागर तक आया है, इसके आगे भी और घटेगा, उसके पहले विशेषार्थ देखते हैं। किसमें
टोटल परिणाम
इयत्ता का प्रण स्थिति कांडक पृथकत्वों की इयत्ता यानी उसका इयत्ता का परिमाण
टोटल कांडक का परिमाण
यानी कितने नंबर ऑफ कांडक होंगे
टोटल कांडक
इयत्ता का एग्जैक्ट शब्द नहीं समझ विशेषार्थ दर्शन मुनि के तीनों भेदों का स्थिति सत्कर्म तीनों का ही तीनों की स्थिति घट रही है। स्थिति कांडक घातों के द्वारा उत्तरोत्तर किस प्रकार घटता जाता है यह यहाँ पर सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहले अपूर्वकरण के प्रथम समय में वह अंतकोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण था। फिर हजारों स्थिति कांडक घात होकर अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में वह लक्ष्य पृथक्त सागरोपम रह गया। उसके बाद भी उसी विधि से वह घटता हुआ असंगी पंचेंद्रिय जीवों के स्थितिबंध के समान 1000 सागरोपम रह गया। पुनः उक्त विधि से घटता हुआ क्रम से चतुरिंद्रिय जीवों के 100 सागरोपम प्रमाण 3 इंद्रिय जीवों के 50 सागरोपम प्रमाण 2 इंद्रिय जीवों के 25 सागरोपम प्रमाण और 1 इंद्रिय जीवों के 1 सागरोपम प्रमाण रह जाता है। ये बात ख्याल में आई। अपूर्वकरण के पहले समय में अंत कोड़ा कोड़े अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में लक्ष्य पृथक सागर फिर वही क्रम से घटते घटते 1000 हुआ 100 हुआ 50 हुआ 25 हुआ 1 हुआ तो क्या बीच में एकदम 1000 से डायरेक्ट 100 पर आ गया नहीं। ये हमें बताने के लिए क्योंकि हमें ये अन्य बातें मालूम है उसके साथ कंपेयर करने के लिए 1000 100 50 वगैरह बताएं। ऐसे घटते घटते 75 सागर भी हो जाएगा 60 सागर भी हो गया ऐसे क्रम से ही घटते चला जाएगा जिसको कहेंगे माइलस्टोन से एक एक तो, हाँ हाँ बता दिया। यहाँ सर्वत्र स्थिति कांडकों का प्रमाण यानी उनकी संख्या सर्वत्र पूर्व के और बाद के इस प्रकार दो स्थिति बंधों के बीच के अंतर को निकाल कर उसके अनुसार जान लेना चाहिए। उदाहरणार्थ असंगी पंचेंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के स्थिति बंधों में 900 सागरोपमों का अंतर है वो 1000 है ये 100 है तो अंतर 900 हो गया। अतः 1000 सागरोपम में 100 सागरोपम प्रमाण स्थिति सत्व के होने में जितने स्थिति कांडकों की संख्या होगी आगे वह 100 सागरोपम प्रमाण स्थिति सत्व से 3 इंद्रिय जीवों के स्थितिबंध के समान 50 सागरोपम प्रमाण स्थिति सत्व के होने में स्थिति कांडकों की संख्या कम होगी। जहां अंतर कम है वहां 900 सागर घटे हैं और यहां 50 सागर घटे हैं फिर 25 सागर घटे हैं तो उतनी कम होगी। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। अभी कब तक चलेगा अभी तो 1 सागर तक आ गए ना। जाव पलिदोम ठिरीसंत कम्मम ताव पलिदोमस्त संख्य यदि भागो ठिरीखंडयम पलिदोवो में ओलुत्ते तदो पलिदोमस्त संख्य जा भागा आगाईदा
ऊपर का सूत्र बाकी है।
ओ मैंने गलत पढ़ा तदो ठिरीखंडय पुदत्ते न हाँ बराबर है पलिदोवम ठिरीगम जादम दंसन मोहनिय ठिरीसंत कम्मम यानी ऐसे करते करते कहाँ तक आया तो 1 पल्लोपम तक आ गया। इसके बाद स्थिति कांडक पृथक्त्व के द्वारा दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म पल्लोपम प्रमाण स्थिति वाला हो जाता है। 1 पल्ल तक आ गया वो पल्ल प्रमाण हो गया। यह सूत्र सुगम है। अब जो मैंने पढ़ा था उसको फिर पढ़ती हूँ। जाव पलिदोवम ठिरिसंत कम्मम ताव पलिदोवमस संख्य यदि भागो ठिरिखंडे। जब तक अभी तक हम जो देखते हैं ना पल्ले तक होता आया है, अब तक स्थिति कांडक का प्रमाण कितना था तो पल्ले का संख्या तो भाग। अब कहते पलिदोव में ओलुत्ते पल्ले को पार करने के बाद उल्लंघने के बाद अभी क्या होगा पलिदोवमस संख्य जा भागा आगाईदा। संख्य जा भागने संख्यात बहुभाग। अभी संख्या एक एक कांडक में संख्यात बहुभाग चला जाएगा और संख्यात भाग शेष रहेगा। कहते हैं जब तक पल्योपम से अधिक स्थिति सत्कर्म, यहाँ भी सत्कर्म हुए हैं, रहता है तब तक पल्योपम के संख्यात भाग प्रमाण प्रत्येक स्थिति कांडक होता है तथा पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्व के अवशिष्ट रहने पर, यानी इसके आगे अभी पल्ले हो गई ना तो अभी आगे स्थिति कांडक के लिए पल्योपम के संख्यात बहुभाग को ग्रहण किया। यानी यहाँ कांडक संख्यात गुणा प्रमाण वाला हो गया, यहाँ तो विशुद्धि और बढ़ी तो बहुत बड़े कांडक होने लगे थे। पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म रहने से पूर्व सर्वत्र ही अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर स्थिति कांडक का आयाम पल्योपम के संख्यात भाग प्रमाण ही होता है और वो भी हमने देखा था शुरू शुरू में घटते गया था, परंतु यहाँ पलिदोव में ओलुत्ते अर्थात दर्शन मोहनीय कर्म का स्थिति सत्कर्म पल्योपम प्रमाण अवशिष्ट रहने पर उसका आयाम पल्योपम के संख्यात बहुभाग प्रमाण होता है। यानी यहाँ कांडक बड़े बड़ा होता है। फिर शंका, ऐसा किस कारण से होता है? समाधान, इस सूत्र के बल से निश्चित होता है कि वहां पर उस प्रकार से स्थिति कांडक घात की प्रवृत्ति स्वभाव से ही होती है तथा इसके आगे भी पल्योपम का अंतिम संख्यात्वा भाग शेष रहने तक सर्वत्र ही जो स्थिति सत्कर्म शेष रहे उसके संख्यात बहुभाग को ग्रहण कर स्थिति कांडक बनता है। इस अर्थ की विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं, ये ऐसा कब तक चलेगा? अंतिम संख्यात्वा भाग, इसके बाद क्या होगा? असंख्यात्वा भाग शेष रहेगा। पहले कितना था कांडक का प्रमाण? पल्ले का संख्यात्वा भाग। जब पल्ले प्रमाण स्थिति हो गई उसके बाद संख्यात बहुभाग, संख्यात भाग शेष रहेगा, फिर संख्यात बहुभाग नष्ट होगा, फिर संख्यात भाग शेष रहेगा। अभी संख्यात संख्यात कहते अंतिम संख्यात रहेगा, वहां तक यही बात चलेगी। उसके आगे क्या होता है वो कल देखेंगे ना, क्योंकि अभी ये तो यहाँ दूरापकृष्टि नाम आने वाला है, इसमें आए ना। यानी पहले लक्ष्य पुस्तक तो था, फिर हमने असंगी के योग्य चतुरिंदे के योग्य वगैरह वगैरह देखते देखते सागर तक आए, सागर के बाद पल्ले तक आए, तो लक्ष्य पृथक्त्व से लेकर पल्ले तक एक हम उसको पर्व कहेंगे, पूरा उसका खंड। सर्वत्र पल्ले का संख्यात भाग प्रमाण ही स्थिति कांडक आयाम था, लक्ष्य पृथक्त्व से लेकर पल्ले तक, ये लक्ष्य पृथक्त्व से लेकर पल्ले तक कांडक का आयाम है पल्ले का संख्यात्व। अब पल्ले से लेकर पल्ले का संख्यात्व भाग रहने तक अंतिम, वहां उसका कांडक का प्रमाण कितना है? संख्यात बहुभाग, यानी संख्यात से भाग देंगे और फिर ये संख्यात बहुभाग। अब उसके आगे जो कुछ दूरा प्रपुष्टि की बात है वो कल देखेंगे। यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।